ओम शांति। भाई जी ने बहुत कुछ कह दिया, मुझे नहीं लगता कि इतना कहने की आवश्यकता थी। हम सब तो आज मिल रहे हैं अपना अनुभव शेयर करने के लिए कि हमारा योगी जीवन क्या होना चाहिए। योग का जो मेरे से मंजू बहन पूछ रहे थे, तो मैंने कहा योगा राजयोगा इन एक्शन, कि हम जीवन में योग को यूज कैसे करें, प्रयोग कैसे करें। आज भी जैसे बाबा ने अव्यक्त मुरली में कहा कि जो कुछ भी खजाने हमें मिले हैं हमें यूज करने हैं। अगर यूज करेंगे तो अपने बनेंगे, यूज करेंगे तो उसको बढ़ाएंगे भी, और फिर उसकी प्रारब्ध भी मिलेगी हमें। बाबा जो हमें कहते हैं कि अपनी घोट तो नशा चढ़े, मुरली में कहते हैं ना अपनी घोट तो नशा चढ़े, क्योंकि जो हम चिंतन करते हैं, जो हम अभ्यास करते हैं, जो हम व्यवहार में लेके आते हैं, जो हम अपने स्वभाव को परिवर्तन करते हैं, उसकी प्राप्ति तो हमें ही होती है ना। क्योंकि देखो, एक है ज्ञान, दूसरी है हमारी लगन। बाबा कहते हैं ना, एक तो फेथ चाहिए, निश्चय चाहिए, साथ साथ नशा भी चाहिए, इंटॉक्सिकेशन भी चाहिए कि हम ईश्वरीय संतान हैं। ये तो फेथ हो गया कि हमने शिव बाबा को पहचान लिया, लेकिन उसके साथ फिर नशा कैसे चढ़ता है, इंटॉक्सिकेशन कैसे होती है। अभी हम बाहर जाके किसी को कहें कि हम ईश्वरीय संतान हैं, तो देखना चाहेगा ना कि हमारे में ईश्वरीय संतान के क्या फलक है, क्या गुण है, क्या हमारी मन की स्थिति है। तो लगन तो हमारी है, फेथ भी है, लेकिन वो इंटॉक्सिकेशन कैसे आएगी। अब आपके पास नशा हो लेकिन आप उसको यूज नहीं करें तो नशा थोड़ी चढ़ेगा। ज्ञान का नशा भी तो तभी चढ़ता है ना। ज्ञानवान आत्माएं, योगी आत्माएं जब इस बात को समझ लेते हैं कि हमारी स्थिति क्या है। अब देखो, अगर हम साइंस में प्रोग्रेस देखें, फिजिक्स है या केमिस्ट्री है या इलेक्ट्रॉनिक्स है, उसने हमारे जीवन में परिवर्तन किया, इतने साधन हमें दिए, तो हमें पता लगा कि ये साइंस है। बाकी बेसिक साइंस तो कितने सालों से थी, फिजिक्स भी थी तो केमिस्ट्री भी थी, बायोलॉजी भी थी। तो जो एप्लीकेशन है, जो जीवन में हम यूज करते हैं, जो अप्लाई करते हैं, वो सही मानों में है। अभी पिछले अव्यक्त मुरली में बाबा ने कहा ना कि होली तो लोग भी मनाते हैं, लेकिन वो बॉडी कॉन्शियस तरीके से मनाते हैं। आप सोल कॉन्शियस होके होली मनाते हो, आप अपने संस्कारों की होली जलाते हो। तो मनाने मनाने में फर्क है। आज भी बाबा ने हमें एक्सप्लेन किया। तो योग का जो बेसिक, जो हमारा ध्येय है, हमारी वृत्ति का परिवर्तन होना चाहिए, हमारे एटीट्यूड में चेंज आना चाहिए। सेवा तो सब करते हैं, एक्शन तो सब करते हैं, लेकिन सेवा किस भाव से की जा रही है, किस वृत्ति से की जा रही है, उस पर निर्भर करता है। बाबा माताओं की बहुत महिमा करता है कि शुरू शुरू में हम अपने लौकिक माता जी को भी देखते थे, जब वो पुराने दिन थे तो पोटली में बांध के वो सब कुछ ले जाते थे। सिंप्लिसिटी का जमाना था, थोड़ा थोड़ा करके ले जाते थे, घर के से सेविंग करके। हमारी ग्रैंड मदर भी ऐसे करती थी। तो भाव ये कि वो जो भाव था बाबा के यज्ञ में सहयोगी बनना है, इंटेंशन जिसे हम कहते हैं, वृत्ति कहते हैं, वो वृत्ति थी सेवा की, वो वृत्ति थी बाबा के कार्य में सहयोगी बनने की। तो कोई भी हम कार्य करते हैं उसके पीछे हमारी वृत्ति का महत्व रहता है। अब जैसे देखो, जो मन में होता है वही हमारे व्यवहार में आता है। मन का तन पर भी प्रभाव पड़ता है, मन का हमारे बोलचाल पर भी फर्क पड़ता है। अगर मान लीजिए किसी के प्रति मन में हमारे कोई पॉजिटिव ना हो कि थोड़ा सा नेगेटिव भाव है, तो हमारी बातचीत कैसे होगी। तो यहाँ जो सारा परिवर्तन है योग के द्वारा, वो हमारी वृत्ति का परिवर्तन है। अभी बाबा को हम जैसे कहते हैं, जो बाबा से हमें जो प्राप्ति हुई है वो क्या हुई है, रूहानियत की हुई है। हमारा जीवन रूहानी बन गया है। हम लोग जिस जो बॉडी कॉन्शियस के भाव से निकल के, जिस्म के भाव से निकल के आत्मा के भाव में आ गए। कोई बात करनी होती है उसको जब हम आत्मिक स्थिति में रहकर करते हैं तो उसका प्रभाव क्या होता है। अभी देखो लोग भी भक्ति मार्ग में कितनी तपस्या करते हैं, कितनी मेहनत करते हैं, लेकिन परिवर्तन कब आता है, जब समझ आ जाती है। मैं जब स्कूल में था तो पुस्तकों में महात्मा बुद्ध के बारे में पढ़ते थे, उन्होंने कितनी भक्ति की, कितनी यात्राएं की, फास्ट किए, लेकिन वो जब वो बैठे वो पेड़ के नीचे, जिस पेड़ का महत्व है, उनको जो एनलाइटनमेंट हुई। तो एनलाइटनमेंट भी क्या है, जब हमें अपना मार्ग स्पष्ट दिखाई देने लग जाता है, जब हमें रोशनी दिखाई देती है। ज्ञान भी जब हमारे जीवन में आ जाता है, जब हमें समझ आ जाती है। ज्ञान का अर्थ क्या है, समझ। और योग को क्या कहते हैं, आम भाषा में लोग ध्यान कहते हैं, साधना कहते हैं, बाबा उसको याद की यात्रा कह देते हैं, रिमेम्बरेंस कह देते हैं। है तो बहुत सिंपल चीजें ये ज्ञान। आज भी बाबा ने मुरली में कहा, ज्ञान का अर्थ ये है कि हर संकल्प हमारा ज्ञानवान हो, बोल हमारा ज्ञानवान हो। ज्ञान केवल हम पॉइंट्स नोट करते हैं, धारण करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं, लेकिन जो ज्ञान हमारे एप्लीकेशन होती है, जो ज्ञान हम अपने जीवन में अप्लाई करते हैं। बाबा जब कहते हैं कि चैरिटी बिगिंस एट होम, तो पहले तो सबसे पुराना, पहले हमारा घर तो हमारा शरीर है, हम हैं खुद, तो पहले तो अपना परिवर्तन होता है। वो अपने आप पे हमें रहम करना होता है, अपने आप पे रहम करते हैं, दया करते हैं, अपने आप पे समझते हैं कि ये हमारा, ये जीवन पुरुषार्थी जीवन है, समय इसका वैल्यूएबल है, और इसमें हमें अपने आप को परिवर्तन करना है। और ये भी बाबा कहते हैं, भले हमें बहुत सिंपल लगता है, सहज है, लेकिन मेहनत तो करनी पड़ती है। बाबा ने जो हमारी ये जीवन की दिनचर्या भी बना दी, ये दिनचर्या कोई रिचुअल नहीं है, जैसे भक्ति मार्ग में तो एक रीति रिवाज बन जाते हैं कि भाई इतने बजे सुबह उठ के ये करना है, मंदिर में जाना है, लेकिन हमारी तो ये जो सारी जो दिनचर्या है उसका आधार क्या है, उसका आधार हमारा भगवान से प्रेम है, शिव बाबा से हमारी संबंध है, हमारी रिलेशनशिप है, उससे हमें प्राप्ति होती है। तो जो कुछ भी हमारी जो दिनचर्या भी बनी है, वो हमारे हित के लिए बनी है, हमारे पुरुषार्थ के लिए बनी है, हमारी प्राप्ति के लिए बनी है। अब आप देखो, लोग तो देर तक सोते हैं और फिर देर से जागते हैं, हालांकि हमारे कहानियों में आता है कि अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स ए मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। और साइंस भी ये कहती है कि रात्रि को 12 बजे से पहले की 1 घंटे की नींद रात को 12 बजे के 2 घंटे की नींद के बराबर है। तो भाव, ये हमारी जो दिनचर्या बनी है, वो हमारी दिनचर्या कुछ न कुछ ज्ञान के प्रिंसिपल्स के हिसाब से बनी है। अभी देखो, योगी जीवन में हमारा भोजन भी कैसा होना चाहिए, वो भी बाबा ने हमें सिखाया, सात्विक भोजन चाहिए। अब भले ही आजकल तो क्या है, प्लेन में भी, होटल्स में भी जैन भोजन मिलता है, उसमें अनियन गार्लिक, हमारे कई भाई बहन समझते हैं वही है ना, लेकिन जो बाबा की याद में रहकर बनाया गया भोजन है, जिसको हम ब्रह्मा भोजन कहते हैं, आप घर में बाबा को पहले ऑफर करते हैं, भोग लगाते हैं, फिर भोजन स्वीकार करते हैं और बनाते भी बाबा की याद में है, तो उसका कितना महत्व हो जाता है। तो हमारे जीवन में सारा जो महत्व है वो महत्व है अपनी वृत्ति का। अब बाबा जब हमें बाबा कहते हैं, बाबा का नाम भी गुणवाचक सूचक है कि विश्व कल्याणकारी है, तो हमारी वृत्ति भी क्या होनी चाहिए? सबसे पहले तो हमारी वृत्ति यही हो कि हमारे दृष्टिकोण ही बेहद का हो, लिमिटेड नहीं कुछ भी, बेहद का दृष्टिकोण होगा तो हम सबका कल्याण भी कर पाएंगे। तो ये जो योगी जीवन है, ये योगी जीवन का अर्थ ही है कि हमारे में जो सब भिन्नता समाप्त हो जाती है, हद की इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं, हद की बातें समाप्त हो जाती हैं। तो हम जो वृत्ति है हमारी वो रूहानियत वाली बन जाती है, और रूहानियत के नाते तो हम सब आत्माएं हैं, कोई किसी भी धर्म का हो, जाति का हो, किसी भी रंग का हो। अभी हम लोग बाहर विदेश यात्रा करते हैं तो जब अपने सेंटर्स पे जाते हैं तो वहां की दिनचर्या भी वही है जो हमारी दिनचर्या है। हमें लगता ही नहीं कि हम कोई नई जगह पहुंचे, क्योंकि वही नियम है, वही दिनचर्या है, वही सिस्टम है, वही मुरली है, वही अमृत वेला है, वही बाबा को भोग ऑफर करके भोजन स्वीकार करना। तो भाव ये कि ये जो हमारी वृत्ति की बात है, रूहानियत, वो रूहानियत आ जाती है। और फिर बाबा कहते हैं कि बच्चे आपको रहम दिल भी बनना है। रहम भी देखिए ऐसा होता है कि जैसे आज भी बाबा ने कहा कि कोई व्यक्ति जिसकी वृत्ति ठीक भी नहीं है, जिसका आपको पता भी है लेकिन आप उसको अंदर तो नहीं लेंगे ना। अब नेगेटिविटी को भी पॉजिटिविटी में कैसे परिवर्तन किया जाए? हम ये एक्सेप्ट करते हैं ना कि ये वर्ल्ड ड्रामा है, हर एक अपना अपना रोल प्ले कर रहा है। अब वैसे भी जो ये लिमिटेड ड्रामा होते हैं, सिनेमा होते हैं, तो जिस व्यक्ति का अच्छा पार्ट प्ले करने का रोल होता है वो अपना अंत तक अच्छा पार्ट ही प्ले करता है, और जिसका विलेन का रोल होता है वो अंत तक विलेन का रोल ही प्ले करता है। तो हमें एक्सेप्ट करना है कि ड्रामा में हम सभी एक्टर्स हैं और हर एक रोल प्ले कर रहा है। अगर कोई नेगेटिव प्ले भी कर रहा है तो वो उसका रोल है, असाइंड है, हमें एक्सेप्ट करना है। और अगर हम अपनी अच्छाई पे टिके रहेंगे, अगर हम अपनी शुद्ध वृत्ति में रहेंगे और हम अपने नियमों पे पक्के रहेंगे तो क्या होगा? वो भी परिवर्तन हो जाएगा, उसके प्रति भी हम रहम दिल होके चलेंगे। ये बहुत बारीक बात होती है, क्योंकि हम जो सोचते हैं वो हमारी जो सोच है, जो संकल्प है, वो भी एनर्जी है और वो वाइब्रेशंस में कन्वर्ट होती है, जिसको आप ऑरा कहते हैं। आजकल तो बहुत से साधन आ गए जो व्यक्ति के मन की स्थिति को जान सकते हैं, MRI में भी पता लग जाता है। आप कुछ सोचते हैं, आपके ब्रेन में जो चेंजेस होते हैं वो ऑब्जर्व कर लेते हैं, फिर EEG करते हैं, EEG से भी पता लग जाता है कि आपकी जो शांत भावनाएं वो कितनी है। कुछ भी गुप्त नहीं रह सकता, हम जो कुछ भी करते हैं वो हमारे जो हमारे शरीर की केमिस्ट्री है, शरीर की जो फिजियोलॉजी है उसको प्रभावित करती है, और उसको लोग फिर मेजर कर लेते हैं, उसकी जांच कर लेते हैं। आपने देखा होगा गवर्नमेंट भी, पुलिस भी जो है ना, पॉलीग्राफ टेस्ट यूज करती है, जिसको लाई डिटेक्टर कहते हैं। तो वो कैसे डिटेक्ट करते हैं कि भाई जो जब व्यक्ति कोई अपनी सत्यता के अनुसार नहीं बोल रहा होता, वो अपने आप को तो धोखा नहीं दे सकता ना। तो वो ग्राफ में आ जाता है, वैसे ही ग्राफ आ जाता है। तो इसलिए हमारी जो शुद्धता है, हमारी जो आंतरिक स्वच्छता है, उसका बहुत महत्व है। दादी जानकी कहा करती थी, सच्चाई, सफाई और सादगी, ये तीन बातों पे एम्फेसाइज करती थी। अब देखिए, सच्चाई का मतलब ये नहीं है कि हमें सत्य बोलना, लेकिन सच्चाई का मतलब है ऑनेस्टी भी है। सच्चाई का मतलब बीइंग, अपने आप के हिसाब से चलना, जो सत्य बातें हमें पता है उसके आधारित पर जीवन व्यतीत करना, जो ट्रुथ पता है। वो कहते हैं ट्रुथ इज हायर बट स्टिल हायर इज ट्रुथफुल लिविंग। तो सच्चाई, सफाई और सादगी, क्लैनलीनेस के लिए बोलते हैं क्लैनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। तो वो क्लीन, अगर आप, वो लोग बोलते हैं ना कि अगर वो दो बोलते हैं द्वैत और अद्वैत, वो वृत्ति, बाबा कहते हैं अगर हमारे मन में द्वंद होगा, ड्वेलिटी होगी, तो कन्फ्लिक्ट चलेगी, और जब कन्फ्लिक्ट होगी तो फिर पीस कहां से होगी। तो इसलिए सत्यता का भी महत्व है, और सत्यता से ही जीवन में रूहानियत आती है। दादी प्रकाशमणि जिसे जब पूछते थे कोई, तो उन्होंने एक बार यहाँ सबकी ज्ञान सरोवर में ही कुछ प्रोग्राम था, तो सबसे हाथ खड़े करवाए कि कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने अपने पूरे जीवन में झूठ नहीं बोला हो। लेकिन दादी ने कहा मैंने कभी भी नहीं बोला। तो सत्यता जो भीतर की सत्यता है, हम जो सुनते हैं, जो ज्ञान इटर्नल ट्रुथ है, अविनाशी सत्य है, आत्मा भी अविनाशी सत्य है, परमात्मा भी अविनाशी सत्य है, सृष्टि चक्र भी अविनाशी सत्य है, कर्म फिलॉसफी भी सत्य है, तो उस सत्यता के आधार पर अपना जीवन व्यतीत करना, वो सच्चाई है। उससे रूहानियत आती है, उससे सर्व के प्रति रहम दिल हम बनते हैं। हमारी जो वृत्ति है वो अनलिमिटेड कॉन्शियसनेस की बन जाती है। फिर बुद्धि में ये नहीं आता है। बाबा हमेशा ये कहते थे कि हमें अपने ऊपर ज्यादा ध्यान देना है। बाबा कभी कभी मुरलियों में बोलते थे ना, हमारी दूर की नजर तेज है और नजदीक की नजर कमजोर है, अव्यक्त मुरली में बाबा ने कहा। तो हमें तो अपने जो भीतर की बात है, हमें अपने अंदर, जो बाबा कुछ दिन पहले जयंती में एक क्लास करवा रहे थे, तो उन्होंने कहा कि मैंने दादी से कहा कि मैं यूनिटी पे क्लास करवाने के लिए जा रहे हैं, तो दादी ने कहा यूनिटी के लिए पहले हमें एकांत प्रिय बनना होगा, अंतर्मुखी बनना होगा, एकाग्रचित बनना होगा। तो ये जो सब बातें, ये सारी बातें बहुत सूक्ष्म है, और हमारी जब विश्व कल्याणकारी, जैसे बाबा विश्व कल्याणकारी है, वो वृत्ति होगी, तो देखो उसमें कितना अंतर आएगा कि मुझे सबका हित करना है, सबका भला करना है। जब हम विश्व कल्याण की बात सोचते हैं, तो हम सोचते हैं हम दुनिया में क्या करेंगे, लेकिन जो भी आसपास है हमारे, सबका भला हो, सबका हित हो, सबकी उन्नति हो। बाबा कहते हैं ना, हम सबको देखो, अगर हमें सतयुगी दुनिया की स्थापना करनी है, तो हम सबको ही चेंज होना पड़ेगा ना, तो एक दूसरे के मददगार बनेंगे, एक दूसरे के सहयोगी बनेंगे, एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। अभी सही मानों में कहते हैं कि दुआएं लो और दुआएं दो, तो दुआएं कैसे मिलती हैं? किसी को हिम्मत देने से, किसी को सहारा देने से, किसी के जीवन में खुशी लाने से, ये नहीं कि धन दौलत से। आप देखें, धन ठीक है, किसी को हम धन से मदद करते हैं, लेकिन सही मानों में अगर किसी कोई व्यक्ति दुखी है, मुश्किल में है, आपने उसके साथ समय भी जाके स्पेंड किया है ना, थोड़ी देर उसके साथ बैठ भी गए, तो उसके मन से कितनी दुआएं निकलती हैं। तो वो जो सहारा देना है, जो सबका भला हो, सबका हित हो, उसके लिए हमें रहम दिल तो बनना पड़ेगा ना। रहम क्या होता है? रहम ये होता है, एक कई बातें आ जाती हैं, कोई दया कहता है, कोई कंपैशन कहता है, करुणा है। हम बिना लगाव के आते हुए, बिना लपेट में आते हुए, अभी देखो कोई व्यक्ति मान लीजिए दलदल में फंसा हुआ है और आप उसको बचाने जाओ, आप भी दलदल में फंस जाओ, लेकिन क्या करेंगे आप उसको? आप कुछ मदद देंगे, कुछ रोप फेंक देंगे उसके पास ताकि उसको पकड़ के वो बाहर आ जाए? तो कंपैशन या करुणा में हमारा जो दृष्टिकोण है वो दूसरा होता है, रूहानियत का होता है। महात्मा बुद्ध की ये कहानी सुनाते ना, वो जा रहे थे किस रास्ते से, तो उनको लोगों ने कहा कि उस रास्ते में तो अंगुली माल है, वो तो सबके सिर काट देता है। तो महात्मा बुद्ध ने कहा कोई बात नहीं, उनमें जो उन्होंने उसकी आंख में देखा और उससे पूछा ये क्यों कर रहे हैं, इतने में भी कहते हैं उसका परिवर्तन हो गया। तो करुणा वो है कि निर्भय होकर सत्य मार्ग पर चलकर हम किसी की मदद करते हैं, सत्यता के आधार पर, बिना लगाव के। सेवा भी जो वो जीव कहे, सेवा भी बिना स्वार्थ के जो की जाती है उसका महत्व है। एक पुस्तक मुझे किसी ने गिफ्ट की थी, मैं न्यूयॉर्क गया था, उस पुस्तक का टाइटल था व्हाई गुड थिंग्स हैपन टू गुड पीपल। तो वो तो हम सोचते हैं गुड, अच्छे लोगों के साथ तो सब अच्छा होना चाहिए ना। तो उसने कहा एक बात है, वो है गिविंग, जो बाबा कहते हैं कि हम दाता बन के चलो, कि अगर आपको जीवन में एक बात पकड़नी है वो है गिविंग, दाता बनो, देने की भावना हो हमारी। तो देने में जो मजा है वो लेने में मजा नहीं है। जब आप किसी से लेते हैं तो आपका संकल्प चलता है कि इसको मैं रिटर्न कैसे करूंगा। हमारी भाषा में कहते भी हैं, आम भाषा में, नेकी कर और दरिया में डाल। जो निस्वार्थ भाव से बिना किसी रिटर्न के, और साइंस में तो ये स्टडी किया है कि जो निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं, किसी की मदद करते हैं, उनका जो शारीरिक स्वास्थ्य भी बेहतर होता है, उसको वो हेल्पर्स हाई कहते हैं। तो जब हम ये सोचते हैं हमारी वृत्ति विश्व कल्याणकारी की हो, हमारी वृत्ति रहम की हो, जैसे बाबा रहम दिल है। अब बाबा ने जब हमारे ऊपर रहम किया तो उसने हमारी कमियों को तो नहीं देखा ना, हमारे भविष्य को देखा, उसके अनुसार में परिवर्तन किया। फिर बाबा हमें ये भी कहते हैं, अभी आज भी जैसे मुरली में था, निमित्त भाव, हमारी वृत्ति निमित्त भाव की होनी चाहिए, ट्रस्टीशिप का कंसेप्ट हो, करण करावन हार करा रहा है, हम केवल निमित्त हैं, करण हार हैं। निमित्त का ये भाव होता है कि निमित्त वो किसी प्रकार का, जैसे उसको एक्सपेक्टेशन नहीं होती है। तो निमित्त भाव से हम जो जिसको ट्रस्टीशिप का कंसेप्ट भी कह रहे हैं। अब बाबा ने हमको जो ये जो ज्ञान दिया है, अब कुछ लोग उस ज्ञान को अपने स्वरूप में बना के, अपना बना के दे रहे हैं, वो भी होता है, मान शान के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। तो बाबा ने जो ज्ञान दिया हम किसी से शेयर करते हैं, तो अगर वो थैंक्स करता तो हम उसको कहते हैं नहीं, ये ज्ञान तो शिव बाबा का है, आपका भी उतना ही अधिकार है। निमित्त भाव जो है कि हम भगवान ने हमें निमित्त बनाया है कोई सेवा के लिए। अब जैसे बाबा ने ये हॉस्पिटल शुरू किया, संकल्प तो निर्भय भाई का था, उनकी बायपास सर्जरी हुई थी, वो बॉम्बे में थे, तो उन दिनों में चंडीगढ़ में होता था, उनको मैंने फोन किया उनका हाल चाल पूछने के लिए, तो उन्होंने मुझे कहा नहीं हम हॉस्पिटल बना रहे हैं, आपको यहां आना है। तो उनको संकल्प क्या चला कि मेरी तबीयत खराब हुई और मैं बॉम्बे पहुंच सका, लेकिन कई बार ऐसा होगा सब बॉम्बे तो नहीं पहुंच पाएंगे ना, तो यहां कुछ सुविधा होनी चाहिए। अपने भाई बहन भी आते हैं, कम्युनिटी भी है, उसकी सेवा के लिए सब स्वरूप रचा। जब हमने शुरू किया था तो हम केवल 30 लोग थे और आज लगभग 700 लोग सेवा कर रहे हैं। लेकिन भाव क्या था उनका? भाव सेवा का था, कम्युनिटी की भी सेवा हो। और फिर साथ साथ ये भी आपने सुना होगा, क्योंकि जितने अपना भाव, जितने भी ज्यादातर लोग जो है, मेजॉरिटी जो सेवा करने वाले हैं, वो अपने ब्राह्मण भाई बहने हैं, उनकी वृत्ति का कितना प्रभाव पड़ता है, उनकी जो शांत चित्त होकर सेवा करते हैं, प्रेम से सेवा करते हैं, वो भी तो लोग एक्सपीरियंस करते हैं। बाबा भी कहते हैं ना कि आपके चेहरे और चलन से पता लगे, तो वो उसका भाव। उसके साथ साथ क्या हुआ, ये जो आपने सुना होगा कि मेडिटेशन को, राजयोग के अभ्यास को, सात्विक भोजन को, काउंसलिंग को, एक्सरसाइज को लेके जो हार्ट पेशेंट्स हैं उनको ये सिखाया, तो उनकी हार्ट की बीमारी ठीक हुई, डायबिटीज की बीमारी ठीक हुई, नशा, कुछ लोग जो नशा करते थे उनका नशा ठीक हुआ। तो ये क्यों हुआ? क्योंकि जो वृत्ति परिवर्तन है, जिन्होंने नशा छोड़ा था, हम लोगों ने एक सर्वे किया था और विदेश के भाई बहने ज्यादा थे उसमें, मेजॉरिटी जो हार्ड ड्रग्स लेते थे, अल्कोहल था, टोबैको, उनसे पूछा कि आप ज्ञान में आने के बाद आपने नशा कैसे छोड़ा, तो उनका एक ही उत्तर था कि हमारा मन ही उससे हट गया, एवर्शन हो गई, हमने कोई मेहनत नहीं की। जब किसी को कोई चीज बेहतर मिल जाती है, अच्छी चीज मिल जाती है, तो खराब चीज तो अपने आप छूट जाती है ना। मेजॉरिटी का यही था, सिर्फ 5 या 7% लोगों को, वो हमने पेपर पब्लिश भी किया, 5-7% को जो है साइकोलॉजिकल सपोर्ट लेनी पड़ी। तो आप देखो ये भी चमत्कार है, क्योंकि अगर हम किसी चीज को समझ जाते हैं और उस चीज को अपनाते हैं, तो फिर समझ में आ जाती है कि ये जो लोग क्यों लेते हैं नशा, क्योंकि उनको आनंद मिलता है उससे। एक दवाई आई थी LSD, उससे लोगों ने लेना शुरू किया, उनको लगा इससे समाधि बनेगी हमारी, उससे जो फीलिंग आती थी वो सब आ गई। तो लोग नशा क्यों करते हैं? वो सोचते हैं कि जो हमारा दबाव है, हमारा प्रेशर है, हमारा तनाव है, वो खत्म हो जाएगा। लेकिन बाबा ने तो कहा ना, बाहर की परिस्थितियां तो बदलनी है, कुछ वो बदलेंगी क्या, और भी खराब होंगे। बाहर की परिस्थितियों को आप चेंज नहीं कर सकते। अभी देखिए, बाहर की परिस्थितियां नहीं चेंज कर सकते, हम क्या कर सकते हैं? अभी जैसे बारिश आ रही है, हम बारिश को तो बंद नहीं कर सकते, लेकिन छाता तो ले सकते हैं ना। तो बाबा ने यही सिखाया, बाहर की परिस्थितियों को हम चेंज नहीं कर, लेकिन हम अपने अंदर की ताकत को तो बढ़ा सकते हैं। एक्सटर्नल प्रेशर अलग चीज है, लेकिन इंटरनल रेजिस्टेंस को तो बढ़ा सकते हैं। तो वही हम सब ने किया, हमने अपने अंदर की ताकत को बढ़ाया। बाहर कोई मिसबिहेव भी कर रहा है या कुछ हिंसा भी हो रही है, तो हमें प्रभावित नहीं करेगी, क्योंकि हम किसी को कोसेंगे भी नहीं। हमें तो सारा बाबा ने त्रिकालदर्शी बना दिया है ना, बताया है कि क्या होने वाला है, स्थितियां तो बदलने ही वाली हैं, समय तो बदलने वाला है। तो जब हम निमित्त भाव से चलते हैं, ये समझते हैं कि बाबा ने हमें ये सेवा दी है, तो ये सारा जो सेवा का विस्तार हुआ और लोग भी सहयोगी बनते गए। जब आपकी वृत्ति सेवा की होती है, निस्वार्थ की होती है, मैं आपसे एक कहानी शेयर करता हूं। यहां से लगभग 150 किलोमीटर पे जालोर है, तो वहां हम लोग आई कैंप्स लगाया करते थे, पेशेंट्स लेके आते थे, आबू रोड में सर्जरी करते थे। तो वहां एक बाबूजी रहते थे, फिजिक्स के प्रोफेसर थे रिटायर्ड, और कभी कभी सेंटर पे आते थे, जैन थे। तो उनकी पत्नी का देहांत हो गया था, तो मेरे पास आए कि या आप जालोर में आंख का हॉस्पिटल खोलो। तो मैंने उनसे कहा कि देखो जालोर यहाँ से 150 किलोमीटर दूर है, हमारे लिए मैनेज करना मुश्किल होगा। तो एक बार तो वो सुन के चले गए, दूसरी बार वो सेवा केंद्र के इंचार्ज बहन को अपने साथ लेके आए कि नहीं हमें आंख का हॉस्पिटल वहां खोलना है। तो फिर मैं गया उनके साथ, वहां लैंड देखी, उन्होंने 3-4 जगह दिखाई, हमने सिलेक्ट की। बाद में मुझे पता लगा, क्योंकि वो अकेले रहते थे, वो जो अपने घर में रहते थे अपना घर बेच दिया और घर बेच के वो हॉस्पिटल बनाया। और वो अब देखो ड्रामा ऐसा होता है, हॉस्पिटल की कंस्ट्रक्शन चल रही थी, उनको कैंसर हो गया और हॉस्पिटल शुरू होने से पहले उनकी डेथ भी हो गई, लेकिन जाने से पहले अपना सब कुछ सफल करके गए। और जब भी सेवा स्थान पे वो आते भी थे ना, मुझे मैंने देखा कितनी बार ब्रह्मा भोजन भी लेंगे तो पहले भंडारे में डालेंगे। जैन थे, इतना बाबा के, लेकिन क्लोज थे, संपर्क में थे। तो अगर आपकी भावना शुद्ध होती है, निमित्त भाव होती है, तो लोग भी सहयोगी बन जाते हैं। अगर मान लीजिए आपके भाव में अपनी कुछ मान शान या कुछ भी तरीके से होगा, तो लोग भी आपके नजदीक नहीं आएंगे, वो भी चाहेंगे कि पहले आप उनको एक्नॉलेज करो। तो हमारी जो निमित्त भाव की जो वृत्ति है कि हाँ बाबा ने हमें निमित्त बनाया है, किसी भी सेवा में बनाया, सेवा तो उसकी है ना, उल्टा हमें सेवा दी है हमारा भाग्य बनाने के लिए। बाबा ने हमें निमित्त बनाया तो भाग्य, हम सेवा के निमित्त बने तो हमारा ही भाग्य बनाने के निमित्त बनाया। किसी को भी वो सिलेक्ट कर सकता था, किसी को भी चूज कर सकता था, तो बाबा ने हम सबको चुना, हम सबको निमित्त बनाया सेवा के लिए, सेवा स्थान पे रहने के लिए, मधुबन में रहने के लिए, तो उसका हमारा ही भाग्य बनाया। तो हमारी वृत्ति जो ये निमित्त भाव की है, बेहद की है, विश्व कल्याणकारी की है, उस वृत्ति से बहुत अंतर पड़ता है। अभी आप देखो धीरे धीरे अगर हम अपने आप को गुणों से संपन्न बनाते जाते हैं, जब हम संपन्न होते हैं, जब हम बिल्कुल फुलफिल हो जाते हैं, तो हमें बाहर की कोई चीज पुल नहीं करती, तो वैराग्य वृत्ति तो अपने आप आ जाती है। क्योंकि जब हम अंदर से फुल हो जाते हैं तभी वैराग्य वृत्ति आएगी ना। अनासक्त वृत्ति कब होगी? जब हम अंदर से फुल हो जाएंगे, अंदर हमारे खुशी इतनी भरपूर होगी, बाबा से जो हमें प्राप्तियां हुई हैं वो इतनी भरपूर हो जाएंगी, तो फिर अपने आप वैराग्य वृत्ति आ जाएगी, उसके लिए पुरुषार्थ नहीं करना पड़ेगा। लेकिन हमें अपने आप को संपन्न बनाना है। पिछले मास में जो अव्यक्त इशारे थे ना कि संकल्पों की शक्ति को बढ़ाओ, तो एक दिन लास्ट जो था ना, दृढ़ता संपन्न हमारे संकल्प हो, तो संकल्प ही तो बीज है ना, तो दृढ़ता संपन्न यानी संकल्प में भी कोई वैल्यू हो। अगर मान लीजिए मैं आज ये संकल्प करता हूं कि मेरे संकल्प नम्रता वाले होंगे, मोहिनी बहन ने इसको एक्सप्लेन किया कि जैसे हमारी जितनी 36 गुण हैं, अगर हम रोज सोचें कि आज मेरे जितने भी संकल्प होंगे उनमें मधुरता होगी, जैसे आज भी बाबा ने कहा ना निमित्त निर्माण और निर्मल, फिर निर्मल वाणी की भी बात की, निर्मल स्वभाव की भी बात की, भाव की भी बात की, भावना की भी बात की। अगर रोज हम अपने एक गुण को लेकर और उस दिन हम ये सोचें हमारे जो भी संकल्प होंगे उनमें मधुरता होगी, क्योंकि हमारा लक्ष्य जो है वो अपने संकल्पों को पावरफुल बनाने का है। संकल्पों से ही तो बोल हमारे पावरफुल होंगे, और बोल अगर हमारे पॉजिटिव होंगे, प्योर होंगे, पावरफुल होंगे, तो कर्म भी पावरफुल होंगे। तो इसलिए संकल्पों पर ध्यान देना है, तो उससे वैराग्य वृत्ति भी आएगी। संकल्पों में अगर संपन्नता होगी, आज बाबा ने जैसे कहा संतोष की बात की, संतुष्टता, सेवा में भी संतुष्टता कैसे आएगी? तो कंटेंटमेंट कोई बाहर की नहीं है। जब हम बुद्धि से कंटेंटेड होते हैं, जीवन में संतोष होता है, तभी हमारी त्याग वृत्ति हो सकती है, तभी हमारी अनासक्त वृत्ति हो सकती है। तो जो कुछ भी हम ये आध्यात्मिक, देखो बाबा हमेशा कहते हैं कि योग से आपकी लंबी आयु होती है, निरोगी काया मिलती है। वो कैसे होता है? बाबा ये भी कहते हैं कि प्रकृति के पांचों तत्वों को भी आपको सतो प्रधान बनाना है। तो जो हमारे वाइब्रेशंस हैं, जो हमारे संकल्प हैं, उन्हीं से तो सिद्धि मिलेगी। संकल्प से सिद्धि मिलेगी। संकल्प अगर पॉजिटिव होंगे, प्योर होंगे, पावरफुल होंगे, ज्ञान संपन्न होंगे, शक्ति संपन्न होंगे, तभी तो परिवर्तन आएगा। जो वीक संकल्प हैं, जो नेगेटिव संकल्प हैं, वो संकल्प अपने आप पीछे रह जाएंगे। तो हमारा तो रोज का अमृत वेले का अभ्यास ही ये होना चाहिए कि हमें पावरफुल संकल्प क्रिएट करने हैं। वो संकल्प क्रिएट करने हैं जिससे हमारी उन्नति हो, हमारे जीवन में प्रोग्रेस हो। क्योंकि वैराग्य वृत्ति अभी आजकल तो दुनिया में भी लहर है, उसको वो मिनिमलिस्टिक लिविंग कहते हैं। लोग क्या करते हैं, थोड़ा बहुत थोड़ा सामान लेके बाहर जाके फॉरेस्ट में बस जाते हैं। तो वो वैराग्य वृत्ति तो आ रही है लोगों को भी, जो मटेरियलिस्टिक लाइफ है उनसे वो जैसे होता ना ऊब जाते हैं, फ्रस्ट्रेशन हो रही है। लेकिन बाबा ने तो हमें ज्ञान के आधार पर सिखाया कि बेहद की वैराग्य वृत्ति, हमारा बेहद का संन्यास है, हद का नहीं है। तो बेहद की वैराग्य वृत्ति तभी आएगी जब अंदर की संपन्नता होगी। अंदर की संपन्नता आती है निस्वार्थ भाव से सेवा करने से। भरपूरता महसूस होती है, खुशी महसूस होती है जब आप किसी को ज्ञान देते हैं और वो ज्ञान से, ज्ञान का लाभ लेके अपने जीवन को परिवर्तन करता है, तो आपको कितना अच्छा लगता है। फिर बाबा ने ये भी कहा, हमें ये भी ध्यान रखता हूं कि हमें सबको बाबा से कनेक्ट करना है। वो भी है, अपने अपनी तरफ तो किसी को खींचना नहीं है ना। तो इसलिए वो वृत्ति होनी चाहिए, वो है ट्रस्टीशिप का कंसेप्ट, निमित वृत्ति है। जो हमारे संबंधों में जो कभी कभी कटुता आ जाती है, उसका आधार भी ये कि हम फार साइटेड नहीं होते। कभी कभी हम शॉर्ट साइटेड, शॉर्ट टर्म गेन के लिए सोचते हैं। तो अगर हमारी बेहद की दृष्टि वृत्ति होगी तो हम दूर की सोचेंगे, बेहद का भला किस में है। तो जैसे जैसे हमारे अपने पर्सनल जीवन में परिवर्तन आता रहता है, फिर उसके बाद शायद आपको शब्दों की जरूरत भी नहीं पड़ती, साधनों की भी जरूरत नहीं पड़ती। क्योंकि हमें फंसना तो किसी चीज में भी नहीं है, साधनों में भी नहीं फंसना। आज जैसे बाबा ने कहा, आप देखें तो लोग साधना को क्या कहते हैं, हम लोग आम भाषा में ध्यान कहते हैं। और बाबा ने हमें ये कॉन्शियस कर दिया कि आपको हर बात पे ध्यान रखना है, अपना अटेंशन से चलना है, वो है ध्यान। हम कर्म जो भी करें उसमें ध्यान हो के, हम हमेशा ये सोचते ना, हमें अगर बाप समान बनना है तो हमारे कर्म भी हम किससे वेरीफाई करेंगे? बाप समान ही तो कर्म करेंगे ना, वेरीफाई करेंगे क्या ये ब्रह्मा बाप बाबा के कदम थे। एक छोटी सी पुस्तक भी छपी थी, वो जैसे 18 जनवरी पे थे, ब्रह्मा बाबा के 18 कदम, कैसे ब्रह्मा बाबा परोपकारी थे, कैसे उनकी बेहद की दृष्टि थी। अभी देखो कभी कभी क्या होता है, किसी से कुछ हो जाता है, तो हमारे जीवन में क्षमा भाव भी होना चाहिए। कभी कभी हम क्या गांठ बांध लेते हैं, अंदर रह जाती है बात। तो राजयोगी जीवन में तो हमें आगे बढ़ना है। अगर हम पुरानी बातों को भूल के, जिसको हम कहते हैं फॉरगेट एंड फॉरगिव, अगर उससे नहीं चलेंगे तो वही बात हमें पुल करती रहेगी। तो कुछ भी हो जाता है, अपने आप को भी क्षमा करना होता है और दूसरों को भी क्षमा करना होता है। फॉरगेट एंड फॉरगिव की बात है। कभी कभी हम फॉरगिव तो कर देते हैं लेकिन फॉरगेट नहीं करते, तो वो बहुत जरूरी है आगे बढ़ने के लिए, अपनी स्पीड को बढ़ाने के लिए। तो ये जितनी भी वृत्तियां हैं, हमें अपनी वृत्ति पे अटेंशन देना। वृत्ति को कुछ लोग दृष्टिकोण कह देते हैं, एटीट्यूड कहते हैं, लेकिन वैसे देखा जाए तो वृत्त क्या होता है, सर्कल होता है। तो जिन संकल्पों से हम सराउंडेड हैं, चाहे वो हमारे सबकॉन्शियस में या कॉन्शियस में है, जो बात हमारे चारों ओर घूमती रहती है वो हमारी वृत्ति है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हम कुछ बोलते नहीं हैं, हम कुछ बात कहते नहीं है, लेकिन हमारे मन में बात रहती है। तो हम उस वृत्ति दृष्टिकोण को बदलकर और इस शुद्ध वृत्ति से, पवित्र वृत्ति से चलेंगे तो हमारे लिए सब मार्ग जो है वो आसान हो जाएगा। तो कभी कभी हम साधन, जैसे आजकल देखें तो आजकल सबसे ज्यादा बड़ी बात क्या हो गई कि हमने जो साधन मिले थे उन साधनों को ज्यादा यूज करना शुरू कर दिया। सेवा के लिए यूज करते हैं, जिसको लोग आजकल डिजिटल डिटॉक्स भी कहते हैं। तो हम साधन को साधन की तरह यूज करें, लेकिन वो हमारी जीवन की दिनचर्या में, साधना में हमारे डिस्टर्ब नहीं करें। तो जो अनासक्त वृत्ति है, जो वैराग्य वृत्ति है, उसका भाव केवल ये नहीं है कि हमें सब कुछ छोड़ देना है, लेकिन हमारी वृत्ति आंतरिक जो है वृत्ति, वो हमें पुल नहीं करे, कोई चीज हमें डिस्ट्रैक्ट नहीं करे। साधनों को यूज तो करना है लेकिन वो डिस्ट्रैक्ट नहीं करे, हमारे हमारे कारोबार में बाधा नहीं डालें, हमारी रिक्वायरमेंट जो है उसको पूरा करें। तो बाबा हमारे सामने एग्जाम्पल है, दादियां हमारे सामने एग्जाम्पल है। अब ये जो बात हम कहते हैं कि हमारी वृत्ति सबको दुआ देने की हो, बाबा हमेशा कहते हैं सबसे सहज पुरुषार्थ ये कि दुआ दो और दुआ लो। तो दुआ देना और दुआ लेना, दुआ हम तब दे पाएंगे जब हमारी कल्याणकारी वृत्ति होगी, जब सेंस ऑफ बिलोंगिंग होगी, अपनेपन की भावना होगी। और दुआ मिलेगी तब जब हम बिना किसी मोटिव की कोई सेवा करेंगे, निस्वार्थ भाव से करेंगे, सबको सहयोग देंगे। दुआएं लेने के लिए लोग कितना पुरुषार्थ करते हैं, दुआ को हो या उसको वरदान को हो, गुड विशेस भी वरदान में बदल जाते हैं। वरदान हम रोज सुनते हैं लेकिन वरदान को धारण करने की मेहनत तो हमें करनी पड़ेगी ना। बाबा तो हमें वरदान दे रहा है, बाबा ने ब्रह्मा बाबा को भी यही कहा तत्व मेरे समान बनो, लेकिन मेहनत तो ब्रह्मा बाबा ने की ना। फिर अभी दादियों से जब हम सुनते हैं, उनमें और हमारे पुरुषार्थ में क्या अंतर है कि उन्होंने आत्मिक भाव को, आत्मा के पाठ को कितना पक्का किया। 14 वर्ष तक वो आत्मिक स्थिति बनाई। तो वो जो आत्मिक स्थिति है वही फाउंडेशन बनी ना, यज्ञ में भी परिवर्तन की, यज्ञ में सेवा के विस्तार में भी वही वृत्ति बनी। सबसे पहले तो जैसे बाबा ने उनको निर्भय बना दिया, बहने ही थी पहले, तो उनको जो फीमेल चोला है उसकी कॉन्शियसनेस से ऊपर किया, फिर भाई भाई की वृत्ति से सेवा के लिए। तो बाबा ने कितना एम्फेसिस दिया इस बात को। तो जो बाबा ने एम्फेसिस दिया वो हमें अपने जीवन में एम्फेसिस देना है, जीवन में एम्फेसाइज करना है कि हमारा लास्ट भी जो बाबा बार बार देते हैं कि हमारी वृत्ति ये हो कि हमारी धुन हो कि अब हमें वापस घर जाना है। बाबा हमेशा कहते हैं ना, बाबा को भी याद करो, निराकारी दुनिया को भी याद करो और वर्षे को भी याद करो। वो किस लिए कहते हैं? क्योंकि अगर वो जो अंतिम, जो बाबा कहते हैं कि अंतिम जो पुरुषार्थ होगा वो हमारा अचानक का होगा, जो कुछ भी होगा सडन होगा, तो उसके लिए हमें तैयार तो अपने आप को अभी से करना पड़ेगा। बाबा मुरलियों में कभी कभी कहते हैं कि अंत समय हमें कुछ भी याद ना आए। अगर बुद्धि में ये होगा कुछ भी हमारा नहीं है, सब कुछ बाबा का है, हम केवल यूज कर रहे हैं, तभी तो कुछ नहीं याद आएगा। अगर हम किसी चीज को अपना समझेंगे तो अपनी चीज तो फिर याद आएगी ना। ब्रजमोहन भाई ने एक स्टोरी सुनाई थी कि उनके पिताजी ने शरीर छोड़ा तो उनकी शर्ट्स थी, काफी सारी अच्छी शर्ट्स थी, तो उनको मिल गई। तो बाबा को उन्होंने, ब्रह्मा बाबा को आके सुनाया कि बाबा देखो मैंने ये शर्ट पहनी हुई है और लौकिक पिताजी की शर्ट मुझे पूरी फिट हो गई है, बिल्कुल ठीक है। तो बाबा ने उनको कहा कि बच्चे लौकिक पिताजी की शर्ट पहनोगे तो वो याद आएगा, लेकिन बाबा जो आपको देगा तो वो याद आएगा। फिर उन्होंने वो सारी शर्ट्स लाके दे दी बाबा को। फिर कहते एक दिन मैं गुजर रहा था, वही शर्ट किसी भाई ने धोबी घाट में पहनी हुई थी, तो भी उनका संकल्प चला कि ये मेरे हमारी शर्ट है। तो जब हम बाबा का सब समझते हैं, लास्ट में जो हमारी स्थिति होगी कुछ भी याद ना आए, तभी बाबा कहते ना कि हम सब कुछ बुद्धि से भी समर्पित हो जाएं, ट्रस्टी बन के सब संभाल करें। एक बार मैंने सुना था, एक परिवार था लंदन में, वो अपने बच्ची को अगर कोई गिफ्ट भी देते थे ना, वो दादी जानकी को ला के देते थे, दादी जानकी वो बच्ची को देती थी। तो उसको बच्ची को क्या महसूस था कि मुझे यज्ञ से मिला है। तो ये जो हमारी धुन है कि हमें अंत समय संपन्न होना है और अंत समय हमें कुछ भी याद ना है, ये नहीं हो कि हमारी कपबोर्ड कोई खोले तो उसमें सब कुछ इतना कुछ पड़ा हो जो कभी हमने यूज भी नहीं किया। उस हिसाब से तो मैं समझता हूँ कि हम सबको अपनी कपबोर्ड चेक करते रहना चाहिए, जो चीजें हम यूज नहीं कर रहे हैं उसको सेवा में लगा देनी चाहिए, बहुत सी चीजें पड़ी रहती हैं। तो वो जो अंत का पुरुषार्थ है उसकी तैयारी तो हमें करनी है ना अभी, और सारा हमारा जो सारा पुरुषार्थ है वो हमारी शुद्ध वृत्ति का है, हमारे सोचने का है। घर भी याद आना का मतलब क्या है कि हम निराकारी स्थिति में आए थे और निराकारी स्थिति में जाना है। तो वो जो निराकारी स्थिति का अभ्यास है वो हमें देह से विदेही बनने का बनाता है, देह से हम डिटैच हो सकते हैं अपने देह से। तो ये जो बाबा ने हमें सारी बातें सुनाई हैं, ये सारी बातें हमारे एक्शन में आए, ये है राजयोग इन एक्शन, हमारे कर्म में आते हैं। अभी देखो कर्म फिलॉसफी भी क्या है, हमारी कर्म फिलॉसफी यही है, अभी से शुरू होती है। संगम युग में जो हम कमाई करते हैं वो हमारे आधे कल्प तक चलेगी, और बाबा तो कभी कभी कहते हैं 3/4 तक चलेगी। तो जो मेहनत प्रारब्ध अभी बना रहे हैं, हम कुछ भी करते हैं, बाबा ब्रह्मा बाबा के बारे में निवे भाई कुछ सुना रहे थे मुझे कि बाबा ब्रह्मा बाबा फोन पे किसी बंदेली को मुरली सुनाते थे, क्योंकि उसने मुश्किल के टाइम में यज्ञ की मदद की थी। तो ब्रह्मा बाबा के मन में कितना रिस्पेक्ट, कितना रिगार्ड रहता है। तो इसने हमारे हर कर्म में जो श्रेष्ठता आएगी उसकी महीनता में जाने की जरूरत है, अपनी वृत्ति को परिवर्तन की जरूरत है। अभी कहते हैं ना, ब्रह्मा ने संकल्प से सृष्टि रची, तो हम सब ब्रह्मा के संकल्प की रचना है, और सृष्टि रचनी तो हमें है, हमें नए विश्व का निर्माण करना है। और जो कुछ भी हम अभी कर रहे हैं वो सब जो है हमारे, हमारी कमाई, जमा की कमाई है, हमारे खजानों में बढ़ोतरी हो रही है। जितना हम डेप्थ में जाते हैं, गहराई ज्ञान की बातों में, उतना आनंद आता है। आप किसी भी विषय पर चिंतन करते हैं, मनन चिंतन करते हैं, तो क्या होता है, उस बात पे महीनता आती है। और दादियों की विशेषता ये थी, मैंने एक दो बार दादी जानकी को लंदन में फोन किया, उनका तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन वो तबीयत का समाचार बाद में सुनाते थे, पहले उस दिन की मुरली के पॉइंट सुनाते थे। तो हम भी जब आपस में मिले तो हमारी यूनिटी का आधार यही बनेगा कि आपस में हम रूरोहान करें। जब भी मिले, कोई बिजनेस की भी मीटिंग हो, कारोबार की भी मीटिंग हो, लेकिन शुरुआत तो हम ईश्वरीय ज्ञान के एक्सचेंज से करें, तो उससे हमारी यूनिटी बनेगी। संसार में हमें अपने संकल्पों पे ध्यान देना है, अपनी वृत्ति पे ध्यान देना है, हमारी वृत्ति त्याग की हो, हमारी वृत्ति बेहद की हो, हमारी वृत्ति निमित्त भाव की हो, हमारी वृत्ति विश्व कल्याणकारी हो, तो हमारा मार्ग जो है वो श्रेष्ठता की तरफ अपने आप ही जाएगा। ओम शांति। 9 से 10:30 कहा था, तो अभी देखो बाबा की कमाल है। निवेद भाई का एक संकल्प था कि एक यहाँ स्पेशलिटी हॉस्पिटल होना चाहिए, तो अभी हमने अपने प्लान सबमिट किए हैं शांतिवन के पास में ही। जैसे स्पेशलिटी में कार्डियोलॉजी आती है, न्यूरोलॉजी आती है, गैस्ट्रोएंटरोलॉजी आती है, वो हॉस्पिटल का निर्माण शुरू करेंगे, ताकि जो भी भाई बहन है उनको हमेशा ये रहता था। कोविड के समय में क्या हुआ था, कोविड के समय में लगभग 3-4 हजार भाई बहन महाराष्ट्र के यही फंस गए थे, रशिया के कुछ भाई बहन फंस गए थे, कि कभी ऐसा हो तो हमारे पास सभी स्पेशलिस्ट होने चाहिए। तो संकल्प उनका चलता रहा, लेकिन उनके जाने के बाद अभी साकार हो रहा है। तो जो भी हम संकल्प करते हैं, अगर हमारा संकल्प सबके भले के लिए होता है, किसी बड़े कॉज के लिए होता है, तो वो सिद्ध हो जाता है, बड़ा प्रोजेक्ट है। और फिर दूसरा प्रोजेक्ट उसमें ये है कि हम यहाँ एक नीचे शांतिवन के बाहर एक शिवमनी बना हुआ ओल्ड पीपल्स होम, वो हमने 100 लोगों के लिए बनाया था, लेकिन अभी उसमें 300 लोगों की वेटिंग लिस्ट है, 300 लोग आना चाहते हैं, तो उनके लिए भी सुविधा क्रिएट कर रहे हैं। फिर इसके अलावा जो ये जो कैड प्रोग्राम है, जिसको डॉक्टर सतीश गुप्ता रन करते हैं, वो प्रोग्राम के लिए भी ऐसा होता है, जब बाबा का सीजन होता है तो उनको वो स्पेस नहीं मिलता, तो उनका विचार ये है कि हर मास में हम 2 प्रोग्राम करें, उसमें भी लोगों की बहुत लंबी वेटिंग लिस्ट होती है, क्योंकि अब बात लोग महत्व समझने लग गए हैं। अभी पिछले ग्रुप में एक प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन आए थे, उनकी युगल कितने वर्षों से ज्ञान में चलती थी, लेकिन वो मधुबन में नहीं आते थे। तो उन्होंने समझा, जब उन्होंने ये प्रोग्राम अटेंड किया तो समझा कैसे स्पिरिचुअलिटी, रूहानियत हमारे मन की वृत्तियों को बदलती है, तो हमारी केमिस्ट्री भी बदल जाती है। तो इस बात को समझा तो उन्होंने स्वीकार किया। अब आप सोचिए कि डिजीज तो नॉन फिजिकल है, उसको नॉन फिजिकल वे से, आध्यात्मिक वे से आप कैसे ट्रीट करते हैं? क्योंकि लोग कहते भी है ना, एवरीथिंग इज इन योर माइंड। तो जितने भी रोग हैं उनका जो है, यूं कहें अगर उसका ओरिजिन देखें तो कहां से होता है। सेल्स भी अगर हमारे एबनॉर्मल हो जाते हैं, कैंसर भी डेवलप होता है, उसका कनेक्शन भी कहीं ना कहीं एक्सटर्नल स्ट्रेस से, प्रेशर से होता है। और लोगों को कोई स्ट्रेस बड़ी बातों से नहीं होता, लेकिन छोटी छोटी, कहते हैं रेपिटेटिव हैसल्स, छोटी छोटी बातें जो रोजाना होती रहती है ना, किसी को अपना पसंद का खाना नहीं मिला, किसी को समय पे देरी हो गई, किसी को ट्रैफिक मिल गया, उसकी वजह से प्रेशर हो जाता है, रेपिटेटिव हैसल्स कहते हैं। तो बाबा ने तो हमारी पूरी पूरी लाइफ को ही चेंज कर दिया। क्योंकि अगर मान लीजिए हम गुस्सा नहीं करते हैं, लेकिन अगर इरिटेट होते हैं, प्रभाव तो उसका भी उतना ही पड़ता है ना। तो इसलिए हमारा परिवर्तन ही आमूल कर दिया बाबा ने, क्योंकि हमें समझ में आ गया। लोग तो यही समझते हैं ना कि अगर मान लीजिए आप थोड़ी अथॉरिटी नहीं यूज करेंगे, रोब नहीं यूज करेंगे, तो सब काम बिगड़ जाएंगे। लेकिन बाबा ने तो हमें ये कहा कि हमें प्रेम से चलना है, लव ही लॉ बन जाए। अब सत्यु की दुनिया में तो लव ही लॉ होगा ना। तो जब लव ही लॉ बन जाएगा तो फिर उसकी प्रैक्टिस तो अभी हमें यहां या अभी से ही करनी पड़ेगी ना। तो जो शरीर की टोटल बायोकेमिस्ट्री है वो हमारे मन के संकल्पों पर प्रभावित करती है। क्योंकि देखा जाए तो अगर मान लीजिए आप हेल्दी होते हैं तो हॉस्पिटल नहीं जाते ना। जब आप बीमार नहीं होते तो थोड़ी डॉक्टर के पास जाएंगे। तो एक नेचुरल, एक हमारे जीवन में एक सिस्टम है कि हम स्वतः ही स्वस्थ रहते हैं अगर हम अपनी संभाल करते हैं। हमें पता है, हम अपने आप को जानते हैं। अगर अपने आप को जानते हैं क्या मेरे लिए राइट है, क्या राइट नहीं है, क्या भोजन मुझे किस समय करना है, ये सारी जो स्टडी है। अभी देखिए आयुर्वेदा में तो वो लोग पर्सनालिटी के हिसाब से ही चलते हैं कि आपकी पर्सनालिटी क्या है, वात क्या है, पित्त है, उसके हिसाब से चलते हैं, पर्सनालिटी को स्टडी करते हैं। होम्योपैथी वाले भी वो पूरा पर्सनालिटी को स्टडी करते हैं, आपके भी, आपको कौन सी चीज पसंद है, कौन सी चीज आपको इरिटेट करती है, सिर दर्द होता है तो किस कारण से होता है, क्या होता है, तो पूरी स्टडी करते हैं। तो बाबा ने भी हमारी पूरी टोटल, बाबा तो जानी जाननहार है ना, उसने पूरी हमारी, पूरे मन को भी जान लिया और हमारे बुद्धि को भी जान लिया और हमारे संस्कारों को भी जान लिया, उसके अनुसार से हमें ज्ञान मिला है। संस्कार परिवर्तन होंगे तो संसार परिवर्तन होगा। संस्कार हमारे बाधा नहीं बने हमारे आगे बढ़ने के लिए। तो बाबा ने तो हमें कंप्लीट ईश्वरीय ज्ञान दिया, तो ये बहुत आवश्यक हो जाता है कि हम हर चीज को समझें। और जैसे ये होता है ना, कोई भी काम करने से पहले हमें बिल्डिंग ब्लॉक्स लेने पड़ते हैं। हम प्लान करते हैं कि किस तरह से ग्राउंड प्रिपेयर करेंगे, किस तरह से बिल्डिंग खड़ी करेंगे, किस तरह से उसको स्ट्रक्चर देंगे, किस तरह से डिजाइन। ऐसे ही हमें अपने जीवन के लिए भी ऐसे ही सोचना, क्या स्ट्रक्चर हम देना चाहते हैं, क्या हमारी फाउंडेशन होगी। और बाबा ने तो हमें क्लैरिटी से बताया है कि हमारी फाउंडेशन क्या है। फाउंडेशन हमारी पवित्रता है, फाउंडेशन हमारी धारणाएं हैं, फाउंडेशन हमारी मुरली है। तो जब उन बातों को ध्यान रख के करेंगे तो वो जो बिल्डिंग बनेगी, जो स्ट्रक्चर बनेगी, वो मजबूत स्ट्रक्चर बनेगी, अगर उसकी फाउंडेशन स्ट्रांग होगी। तो हम जब फाउंडेशन पक्का कर रहे होते हैं तो हमें यही करना होता है कि हम बाबा भी हमें कहता है कि हम अपनी चेकिंग खुद करते रहें, चेक करते रहें कि क्या जा रहा है हमारे जीवन की फाउंडेशन में, मटेरियल क्या जा रहा है, डिफेक्टिव मटेरियल तो नहीं जा रहा, नहीं तो वो जो पुल बनते हैं, बिल्डिंग बनती है, गिर जाती है कंप्लीट होने से पहले। तो हमें अपनी फाउंडेशन को इतना स्ट्रांग करना है जो हमारी फाउंडेशन 84 जन्म तक चले, 21 जन्म भी नहीं, 84 जन्म तक चले। तो हमें अपनी फाउंडेशन में जो कुछ भी तैयार करना है, चाहे वो हमारे धारणाएं है, हमारी पवित्रता है, हमारे सद्गुणों का विकास है, तो उसको ऐसा ही करना होगा। ओम शांति। हमारे पास 2-3 मिनट हैं, आप कुछ पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं, कुछ क्वेश्चन हो आपके।
हाउ मेनी आवर्स ऑफ अनइंटरप्टेड स्लीप इज रिक्वायर्ड?
अपनी अवस्था
अनइंटरप्टेड स्लीप, हाउ मेनी आवर्स
स्लीप। देखिए ऐसा होता है कि स्लीप के लिए बहुत सी बातें आ जाती हैं। बाबा ने तो हमें सिखाया ना कि अगर हम सोने से पहले अपना चार्ट लिखें, क्लियर करके लिखें, और फिर सोने से पहले थोड़ा अपना पॉजिटिव चिंतन करें। और दूसरी बात होती है हमारे आसपास की बात भी है कि हमारे आसपास ये देखा गया फिजियोलॉजिकली, अगर हम कंप्लीट डार्क करते हैं तो उससे मेलेटोनिन ज्यादा सिक्रीट होती है, और फिर सोने से पहले हमारा भोजन भी 1-2 घंटे पहले हो जाना चाहिए। फिर कुछ चीजें नींद में मदद करती हैं, अभी जैसे जो लोग रोज दूध पीते हैं उनको नींद अच्छी आती है, मिल्क में सेरोटोनिन होती है, वो नींद अच्छी आती है। फिर हम कुछ ना कुछ रात को सोते हुए अगर मुरली का एक भी पैराग्राफ आप पढ़ के सोते हैं तो भी आपको निश्चिंत नींद आएगी। अगर बीच में कभी खुल भी जाए तो हम उसको घबराएं नहीं, उस समय फिर से सो जाएं, क्योंकि अगर हम उस समय उस कोई मन में संकल्प शुरू कर देंगे तो फिर वो नींद नहीं आएगी। एज के हिसाब से 1-2 बार तो इंटरप्ट होती ही है नींद, इट इज नॉर्मल। और अगर हम जितना जितना जो चीजें हमें मदद करती हैं नींद में उनको ध्यान रखेंगे तो फिर होगा, अच्छी नींद अनइंटरप्टेड आएगी। वो बासियां देखिए वो भी क्या है कि डिपेंड करता है ना कि अगर हमने अपनी नींद पूरी नहीं की है, वो नींद हम कभी कभी अपने आस साथ हठ योग हठ से भी चलते हैं। अगर रात को हमें अगर सुबह 3:30 उठना है या 2:30 उठना है या 3:00 उठना है तो उसकी प्रिपरेशन तो पहले से करनी पड़ेगी ना, प्रिपरेशन उसकी पहले से करनी पड़ेगी। रात को जल्दी सोना पड़ेगा, रात को जल्दी भोजन करना पड़ेगा। अच्छा दूसरा ये होता है कि जो चीज हमारी रुचि की होती है, इंटरेस्ट की होती है, उसमें उबासी नहीं आती। तो जो चीज हमें इंटरेस्ट करेगी उसमें हमारी नींद भी खुल जाएगी। पर लेकिन कभी हम मुरली सुनते हुए कभी कभी कुछ लोगों को ड्राउजीनेस होती है, तो बेस्ट पार्ट इज कि आप मुरली के नोट्स लेना शुरू कर दें, अलर्ट होके बैठे। वो कभी कभी अपने साथ थोड़ा सा, मुझे लगता है हमें थोड़ा सा अपने बॉडी को पुश भी करना पड़ता है। पानी की मात्रा हम अच्छी पिए पानी रखें अपने साथ, अलर्ट रहने के तरीके तो हैं, चाय कॉफी ले सकते हैं क्लास से पहले, उससे भी आप अलर्ट रहेंगे, और ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज हैं, जब कभी हम थोड़ा सा लेथार्जिक महसूस करें तो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करें, तो उससे हम अलर्ट रहेंगे। ओम शांति।